पिंकेश कुमार की आवाज़ में, BA सेकेंड ईयर, तुलनात्मक शासन एवं राजनीति, अध्याय जनवादी चीन की व्यवस्थापिका, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। चीन के नए संविधान में विधानमंडल की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है और इसे चीन के विधानमंडल को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, द नेशनल पीपल्स कांग्रेस का नाम दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 57 में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग घोषित किया गया है। संविधान में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जनवादी कांग्रेस और उसकी अस्थायी समिति राज्य की विधायी शक्ति का प्रयोग करने वाला निकाय है। जनवादी कांग्रेस रचना और संगठन। चीन में एक सदनात्मक विधानमंडल है। वर्तमान समय में के राज्यों में सामान्यतः विधानमंडल द्विसदनात्मक होते हैं, लेकिन लगभग 1 अरब 28 करोड़ जनसंख्या वाले राज्य चीन में एक सदनात्मक विधानमंडल को ही अपनाया गया है। 1954, 1975 तथा 1978 के संविधान में विधानमंडल एक सदनात्मक ही था। 1982 के नए संविधान में भी इसी व्यवस्था को अपनाया रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 59 में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की रचना और उसके संगठन पर प्रकाश डाला गया है। अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस में निम्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। 1. प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि। 2. स्वशासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि। 3. केंद्र के सीधे अधिकार में आने वाली नगर पालिकाओं के प्रतिनिधि। 4. जनवादी मुक्ति सेना के प्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारण और इसके निर्वाचन के ढंग की कानून व्यवस्था द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रतिनिधियों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। चीन में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्तियों को वयस्क माना गया है। सभी वयस्क नागरिक मताधिकारी हैं और निर्वाचन में भी उम्मीदवार हो सकते हैं, परंतु शर्त यह है कि वे पागल नहीं हो, न्यायालय से दंडित न हो और साम्राज्यवादी पूंजीपति तथा सामंत न रहे हों। राष्ट्रीयता, प्रजाति, काम धंधे, कुल, धार्मिक विश्वास, शिक्षा, संपत्ति या निवास स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मताधिकार या उम्मीदवार होने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। जनवादी कांग्रेस के सदस्यों की संख्या का निर्धारण कानून के आधार पर होता है। नए संविधान को स्वीकृत करने वाली कांग्रेस में सदस्यों की उपस्थिति 3037 थी। इसी प्रकार जनवादी कांग्रेस विश्व का सबसे बड़ा विधायी सदन है। जनवादी कांग्रेस के सदस्य को डिप्टी कहा जाता है। व्यवहार के अंतर्गत अन्य संवादी देशों की तरह चीन में भी उम्मीदवारों की एक ही सूची रखी जाती है और चुनाव में संघर्ष की स्थिति कभी भी उत्पन्न नहीं होती। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की नामजदगी पर दल के केंद्रीय अधिकारियों का पूर्ण नियंत्रण रहता है। चीन के शासकों के अनुसार उम्मीदवारों की यह नामजदगी व्यापक और निरंतर वाद विवाद के आधार पर होती है और इसे लोकतांत्रिक विचार विमर्श की प्रक्रिया का परिणाम समझा जाना चाहिए। सदस्यों के विशेष अधिकार। संविधान के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के सदस्यों को उनके सदस्य बने रहने तक कुछ विशेषाधिकार और अनुमतियां प्रदान की गई हैं। किसी भी सदस्य को कांग्रेस की पूर्व अनुमति के बिना बंदी नहीं बनाया जा सकता और न ही मुकदमा चलाया जा सकता है। यदि कांग्रेस की बैठक न हो तो इस संबंध में कांग्रेस की अस्थायी समिति से अनुमति लेना आवश्यक है। कार्यकाल और अधिवेशन। अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है। इसके कार्यकाल की समाप्ति से 2 माह पूर्व अस्थायी समिति को नई कांग्रेस के निर्वाचन पूर्ण करा लेने चाहिए। अस्थायी समिति के लिए यह आवश्यक है कि यह जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष में 1 बार अवश्य बुलावे। आवश्यकता पड़ने पर इसका अधिवेशन पहले भी बुलाया जा सकता है और स्थगित भी किया जा सकता है। यदि 1/5 डिप्टी कांग्रेस के अधिवेशन बुलाने का आग्रह करे तो भी इसका अधिवेशन बुलाया जा सकता है। आर्टिकल 61 में जनवादी कांग्रेस शक्तियां और कार्य। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रमुख कार्य और शक्तियां निम्नलिखित हैं। 1. अपने पहले अधिवेशन में जनवादी कांग्रेस अपनी कार्यवाही के संचालन हेतु प्रेसिडियम का चुनाव करती है। 2. यह संविधान में संशोधन करती है। 3. यह संविधान के क्रियान्वयन का निरीक्षण करती है। 4. यह फौजदारी, दीवानी तथा राज्य के विभिन्न अंगों से संबंधित मूलभूत कानूनों का निर्माण व संशोधन करती है। 5. जनवादी चीनी गणराज्य के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करना। 6. राष्ट्रपति की सिफारिश पर राज्य परिषद के प्रधानमंत्री तथा उप प्रधानमंत्री के चयन का निर्धारण करना। जनवादी कांग्रेस की स्टेट काउंसिलर, मंत्रालयों के प्रभारी मंत्रियों, ऑडिटर जनरल तथा राज्य परिषद के महासचिव का प्रधानमंत्री द्वारा मनोनयन होने पर अंतिम रूप से चयन करती है। 7. यह केंद्रीय सैनिक आयोग के अध्यक्ष का निर्वाचन करती है और उसके द्वारा मनोनीत सदस्यों का आयोग के लिए चयन करती है। 8. यह सर्वोच्च जनवादी न्यायालय के सभापति का निर्वाचन करती है। 9. यह सर्वोच्च जनवादी प्रोक्यूरेटर के प्रोक्यूरेटर जनरल का निर्वाचन करती है। 10. यह आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजनाओं की जांच और स्वीकृति प्रदान करती है। यह योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में प्रस्तुत प्रतिवेदनों की जांच करती है। 11वां, यह राज्य के बजट की जांच व स्वीकृति प्रदान करती है। यह बजट के क्रियान्वयन संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। 12वां, यह स्थानीय समिति द्वारा लिए गए अवांछित और अनुचित निर्णयों को बदल सकती है या उन्हें रद्द कर सकती है। 13वां, नए प्रांतों, स्वायत्त प्रदेशों या नगर पालिकाओं की स्थापना के लिए इसकी स्वीकृति आवश्यक है। 14वां, यह विशेष प्रशासनिक प्रदेशों की स्थापना का निर्णय लेती है। 15, यह युद्ध और शांति के प्रश्नों पर समुचित निर्णय लेती है। 16, यह उन सभी कार्यों और शक्तियों का प्रयोग करती है जो कि राज्य के सर्वोच्च शक्तिशाली अंग के रूप में इससे अपेक्षित है। नए संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस निम्न पदाधिकारियों को इसके पद से हटा सकती है। 1, यह चीन के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को। 2, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, स्टेट काउंसिलरों, मंत्रालयों तथा आयोगों के प्रभारी मंत्रियों, ऑडिटर जनरल तथा स्टेट काउंसिल के महासचिव को। 3, यह केंद्रीय सैनिक आयोग के चेयरमैन तथा अन्य सदस्यों को। 4, सर्वोच्च जनवादी न्यायालय के सभापति को। 5, सर्वोच्च जनवादी प्रोक्यूरेट के प्रोक्यूरेटर जनरल को। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, वास्तविक स्थिति। जनवादी कांग्रेस की शक्तियों और कार्यों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रिटेन के लोग सदन अथवा किसी अन्य देश की व्यवस्थापिका से किसी भी रूप में कम नहीं है। उसे न केवल विधायी बरन प्रशासनिक और वित्तीय शक्ति में ही प्राप्त है और नए संविधान में तो उसे राज शक्ति का सर्वोच्च अंग कहा गया है। चीन में एकात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण जनवादी कांग्रेस की कानून निर्माण की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है और उसके द्वारा किसी भी विधेयक पर कानून का निर्माण किया जा सकता है। राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों पर कार्यपालिका के किसी पदाधिकारियों को निशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। चीन में न्यायिक पुनर्निरीक्षण का भी व्यवस्था नहीं है, इसलिए जनवादी कांग्रेस द्वारा निर्मित कानून को किसी के द्वारा भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस दृष्टि से जनवादी कांग्रेस को कानून निर्माण के क्षेत्र में ब्रिटिश की संसद या पूर्व सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत से भी अधिक व्यापक शक्ति प्राप्त है। नए संविधान में यह भी प्रावधान है कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस उन अनन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकती है जो संविधान के द्वारा राजसत्ता के अन्य किसी अंग को प्रदान नहीं की गई है। यह उपबंध बहुत ही व्यापक है और इसके अंतर्गत जनवादी कांग्रेस उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है जिनकी चर्चा संविधान में नहीं की गई है। ऐसी कोई भी व्यवस्था अमेरिका, भारत या पूर्व सोवियत संघ के संविधानों में नहीं है। केंद्रीय सत्ता, जनवादी कांग्रेस को शक्तिशाली बनाना ही इस उपबंध का मुख्य उद्देश्य प्रारित होता है, परंतु वास्तविक यह है कि जनवादी कांग्रेस केवल संविधान के पृष्ठों पर ही सर्वोच्च और शक्तिशाली है। वास्तविक स्थिति दूसरी है। इसके कई कारण हैं। प्रथम, इसकी अत्यधिक विशाल सदस्य संख्या के कारण यह किसी भी मसले पर ठीक ढंग से विचार नहीं कर सकती। द्वितीय, जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन बहुत थोड़े समय के लिए होने के कारण समस्त वास्तविक शक्ति इसके सत्तावसान काल में कार्य करने वाली अस्थायी समिति के पास केंद्रित हो गई है। यद्यपि अस्थायी समिति जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी है, परंतु यह उत्तरदायित्व भी केवल कागजी है। तीसरा, साम्यवादी दल के नेता सर्वोच्च नेता ही सब कुछ हैं, वे ही नीतियों का निर्माण करते हैं। अस्थायी समिति या जनवादी कांग्रेस तो केवल संवैधानिक और औपचारिकताओं के नाते अपनी स्वीकृति की मोहर लगाती है। यदि हम जनवादी कांग्रेस के कार्यों और कार्य प्रक्रियाओं पर ध्यान दें तो भी यह निष्कर्ष निकलेगा कि जनवादी कांग्रेस एक दिखावे की संस्था मात्र है। विभिन्न अधिवेशनों में प्रतिनिधियों ने सरकारी प्रतिवेदनों, नीतियों और संकल्पों आदि के विरुद्ध जिनके बारे में निर्णय साम्यवादी दल द्वारा कर लिए जाते हैं, न तो कुछ कहा है, न ही मत दिया। सभी प्रतिनिधियों ने हाथ उठाकर उन्हें स्वीकार कर लिया। इससे स्पष्ट है कि जनवादी कांग्रेस एक साधन मात्र है जिसका प्रयोग चीन का साम्यवादी दल अपने अधिनायकवाद को छिपाने और बनाए रखने के लिए करता है। यदि कोई सदस्य दल के निर्णय की आलोचना का साहस करे तो उसे दक्षिणपंथी करार देकर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। 1954 के संविधान के आधार पर कार्य करने वाली जनवादी कांग्रेस के संबंध में प्रोफेसर हरि शरण जैन ने लिखा है, जनवादी कांग्रेस की सदस्यता का बहुत बड़ा आकार उसमें साम्यवादी दल का प्रधान, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति के बीच समान दलीय आधार के कारण सामंजस्य, जनवादी कांग्रेस के अधिवेशनों का बहुत कम और अल्प समय के होलिया आदि बातों से जनवादी कांग्रेस को संविधान का केवल एक औपचारिक अंग बना दिया है। उसकी यथार्थ सत्ता का प्रयोग अस्थायी समिति करती है। 1982 के वर्तमान संविधान के अंतर्गत कार्य करने वाली जनवादी कांग्रेस के संबंध में भी यह स्थिति निश्चित रूप से है। वास्तविक स्थिति यह है कि चीन की जनवादी कांग्रेस एक दिखावे की संस्था है, साम्यवादी दल ही सब कुछ है और सत्ता साम्यवादी दल में केंद्रित है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति। चीन के नवीन संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति की स्थिति बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। संविधान में इसलिए राष्ट्रीय जन कांग्रेस का स्थायी अंग कहा गया है। रचना, अस्थायी समिति की रचना का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 65 में किया गया है। इसके अनुसार स्थायी समिति में एक अध्यक्ष, कई उपाध्यक्ष, महासचिव तथा अन्य साधारण सदस्य होते हैं। इसका चुनाव राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा ही होता है। इन्हें वापस बुलाने का अधिकार भी उसे है। अस्थायी समिति के आकार के संविधान में संविधान कुछ नहीं कहता है, इसका निर्णय राष्ट्रीय जन कांग्रेस को करना है। व्यवहार में अस्थायी समिति की सदस्य संख्या भी बहुत अधिक हो जाती है। जहां तक इसके कार्यकाल का प्रश्न है, संविधान के अनुसार राष्ट्रीय जन कांग्रेस का कार्यकाल 5 वर्ष है और अस्थायी समिति उस समय तक कार्य करती है जब तक कि नई अस्थायी समिति का चुनाव न हो जाए। अस्थायी समिति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष से कुछ अधिक होगा। यदि राष्ट्रीय जन कांग्रेस का कार्यकाल बढ़ जाए तो स्वाभाविक रूप से इसका कार्यकाल भी बढ़ जाएगा। इसकी बैठकों के संबंध में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि यह अस्थायी निकाय है और इसकी बैठकें किसी भी समय बुलाई जा सकती हैं। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करता है और उपाध्यक्ष उसकी सहायता करते हैं। अस्थायी समिति का अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है तथा आज्ञा तथा निर्णयों पर हस्ताक्षर भी करता है, लेकिन उसे अलग से कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। सैद्धांतिक रूप से वह सोवियत संघ की प्रेसिडियम के अध्यक्ष के समतुल्य दिखाई पड़ता है, लेकिन व्यवहार में वह भी मान्यता प्राप्त नहीं है जो प्रेसिडियम को अध्यक्ष को थी। अस्थायी समिति की शक्तियां एवं कार्य निम्नांकित हैं। संविधान 1982 में बनाई गई संविधान के अनुच्छेद 67 में निम्न कार्य और शक्तियों का वर्णन है। पहला, यह संविधान की व्याख्या करती है और संविधान के क्रियान्वयन का निरीक्षण करती है। दूसरा, वह कानूनों का निर्माण व संशोधन करती है जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस के क्षेत्राधिकार 12 में नहीं आते। तीसरा, राष्ट्रीय जन कांग्रेस के सत्तावसान काल में कानूनों का निर्माण तथा विद्यमान कानूनों में आंशिक संशोधन करने का कार्य स्थायी समिति करती है। चौथा, यह संविधियों की व्याख्या करती है। पांचवा, राष्ट्रीय जन कांग्रेस के सत्तावसान काल में आर्थिक और सामाजिक विकास की योजनाओं तथा बजट को स्वीकृति प्रदान करना है। छठा, यह राज्य परिषद, केंद्रीय सैनिक आयोग, सर्वोच्च जन न्यायालय तथा सर्वोच्च जन प्रोक्यूरेट के कार्यों का निरीक्षण व जाँच करती है। सातवां, राज्य परिषद द्वारा निर्मित उन प्रशासनिक नियमों, आदेशों तथा निर्णयों को यह रद्द कर सकती है जो संविधान के प्रतिकूल है। आठवां, स्थानीय निकायों द्वारा निर्मित उन निर्णय व नियमों को रद्द कर सकती है जो संविधान के प्रतिकूल है। नवां, यह राष्ट्रीय जन कांग्रेस का अधिवेशन न चल रहा हो तो मंत्रियों के चयन, ऑडिटर जनरल तथा राज्य परिषद के महासचिव के चयन के बारे में निर्णय लेती है। दसवां, यह राष्ट्रीय जन कांग्रेस का अधिवेशन न चल रहा हो तो केंद्रीय सैनिक आयोग इसके सदस्यों के चयन के बारे में निर्णय लेती है। ग्यारहवां, सर्वोच्च न्यायालय के सभापति के परामर्श से सर्वोच्च जन न्यायालय के सभापति तथा न्यायाधीश न्यायिक समिति के सदस्य सैनिक न्यायालय के सभापति की नियुक्ति करती है। बारहवां, यह उप प्रोक्यूरेटर जनरल प्रोक्यूरेटरेट समिति के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति करती है। तेरहवां, विदेशों में नियुक्त किए जाने वाले प्रतिनिधियों की नियुक्ति या प्रतिच्युति करने का भी समिति को अधिकार है। चौदहवां, विदेशों से किए जाने वाले समझौतों व संधियों का पुष्टिकरण यही समिति करती है। सैनिक और कूटनीतिक उपाधियां वितरित करने का स्थायी समिति को अधिकार है। सोलहवां, राज्य की ओर से दिए जाने वाले पदक तथा उपाधियां इसकी स्वीकृति से दी जाती है। सत्रहवां, इसे विशेष क्षमादान देने का अधिकार है। अठारहवां, देश पर आक्रमण होने पर युद्ध के प्रतिरोध हेतु निर्णय लेने का इसको अधिकार है। उन्नीसवां, इसे आम लामबंदी तथा आंशिक लामबंदी घोषित करने की शक्ति प्राप्त है। बीसवां, मार्शल लॉ लागू करने का इसको अधिकार है। इक्कीसवां, राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य समस्त कार्य करने का इसको अधिकार है। वस्तुतः यह बहुत ही व्यापक प्रावधान है जिसके आधार पर जन कांग्रेस इसे कोई भी कार्य सौंप सकती है। अस्थायी समिति की वास्तविक स्थिति। संविधान के अनुच्छेद 69 के अनुसार अस्थायी समिति को राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है तथा इसे अपने समस्त दायित्वों का प्रतिवेदन जन कांग्रेस के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है। अस्थायी समितियों की शक्तियों और उन कार्यों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि इसका अधिकार क्षेत्र व्यापक और बहुमुखी है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस के अस्थायी निकाय के रूप में इन जन कांग्रेस के अधिकारों का बहुत अधिक सीमा तक इसी के द्वारा संपादन किया जाता है। इसे राष्ट्रीय राज्याध्यक्ष की तरह महत्वपूर्ण अधिकार तो प्राप्त है ही, एक दृष्टि से यह राष्ट्रीय संसद भी है, मंत्रिपरिषद भी है, सर्वोच्च न्यायालय भी है। इसे रॉबर्ट एलिगेंट ने इसे सरकार की सर्वोच्च संस्था, सुप्रीम बॉडी इन द गवर्नमेंट कहा है, लेकिन कुछ अन्य लेखकों का इस संबंध में दूसरा दृष्टिकोण है। प्रथम, वे कहते हैं कि समिति की सदस्यता बहुत बड़ी है और इतनी अधिक 144 सदस्यता वाली संस्था कुशलता से कार्य नहीं कर सकती। द्वितीय, स्थायी समिति की भूमिका बहुत अधिक सीमा तक राज्य परिषद तक कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति, उसके पोलित ब्यूरो तथा पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति से सीमित हो जाती है। आलोचक के अनुसार चीन में सभी सरकारी संस्थाओं पर केंद्रीकृत पार्टी नेतृत्व है, इसलिए स्थायी समिति को विशेष महत्व नहीं दिया जा सकता। वास्तविक स्थिति यह है कि चीन की समस्त शासन व्यवस्था में साम्यवादी दल के नेतृत्व पर तो संदेह किया नहीं जा सकता, लेकिन इस स्थिति के बावजूद स्थायी समिति समस्त शासन व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। व्यवहारिक राजनीति का महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि स्थायी समिति में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अनेक प्रमुख सदस्य होते हैं और यह बात स्थायी समिति को अत्यधिक योग्यता प्रदान कर देती है। स्थायी समिति के सदस्यों का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि जनवरी 1945 में चौथी कांग्रेस द्वारा 144 सदस्यों की स्थायी समिति निर्मित की गई, जिसमें अध्यक्ष, 22 उपाध्यक्ष और 121 साधारण सदस्य चुने गए थे। चीन की व्यवस्थापिका की रिकॉर्डिंग पिंकेश कुमार द्वारा पुखराज जैन की पुस्तक तुलनात्मक शासन और राजनीति के द्वारा की गई।